अगर किसी को वाकई आप कहते हैं कि फलां अल्लाह का वली है या फलां एवर जो भी है, तो फिर क्या करें? नंबर एक ये है कि उनकी परस्तिश नहीं करनी। इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, ओनली यू वी ओबे एंड वी सीक हेल्प। दूसरी बात, उनकी मदद नहीं लेनी। फिर तीसरी चीज है, उनकी सिफारिश पे किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं करना, उनकी आस पे गुनाह नहीं करने, उनके पास जाके फरियादे नहीं पेश करनी कि हमारी तेरे आगे और तेरी अल्लाह के आगे, नेवर। उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनको करनी वाला भी नहीं समझना चाहिए, और उनको कहना कि ये अब फराइज और बाकी चीजों से बिल्कुल आजाद हो गए, यानी कोई चीज भी उनके बारे में आप सोचें ना, तो उसमें इस्लाम की कोई हद ना टूटे। वलीउल्लाह हैं तो आप उनसे पर्दा करेंगी, चाहे वो कितने बड़े पीर साहब हैं। यकीन करें, मुझे इस शहर का किसी ने बताया, आप खोज में ना पड़िएगा, कि ऐसी भी एक मस्जिद है कि जहां उनके कोई एक पीर जब भी 2-3 माह बाद आते हैं, औरतें अपने सर के बाल नीचे रखती हैं और वो बालों के ऊपर से गुजर के जाते हैं, और वो उनकी कोई खास तारीख होती है उस दिन, कोई 11वीं या कुछ और। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक गैर औरत की उंगली अल्लाह के नबी ने की तरफ आई तो आपने कहा कि औरत हाथ पीछे कर ले, मैं मोहम्मद किसी गैर औरत के हाथ नहीं देखता। आप पीर साहब के सामने जाके दुपट्टे उतारते हैं कि ये तो बुजुर्ग है, और वो जो बुजुर्ग फिर बुजुर्गी के नाम पे बने हुए, जाके देखिए जिना के अड्डे खुले में आज आमिलों के जो डेरे हैं। तो आपको पीछे कुछ क्लिप सुनाए थे जादू के सेमिनार में, फिर लोग जाके वहां अपनी इज्जतें भी जाया करते हैं, और ईमान तो जो टूटता है तो वो टूटता है। फिर इसी तरह याद रखिए कि वलीउल्लाह जिसको आप समझती हैं, उनका थूक, उनके कपड़े, उनका कोई तबरुक, ये सोच के लेना कि अब आपको उसकी बरकत से शिफा होगी, ये नाजायज है। इसी में फिर अब अगली चीज तबरुक आती है ना, सुना वे तबरुक ले लीजिए। बस जब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही करते हैं। कल का मौका है कि ऐसे ही किसी को मैंने कोई चीज दी, ऐसे ही दे दी, कोई बड़ी बात नहीं, तो उन्होंने पकड़ी कहती ये तो तबरुक है। उस वक्त तो मैं पी गई, लेकिन मैं इंशाल्लाह उनको बताऊंगी बाद में कि मुझे इतना गुनाहगार ना करें कि अगर मैंने आपको एक छोटी सी चीज खाने की दे दी तो आप कैसे इसको तबरुक बना रही हैं। मोहब्बत और चीज है, लेकिन देखिए तबरुक क्या है। बा रा काफ से, तबरुक से मुराद है किसी से बरकत हासिल करना। अल्लाह ताला ने कुछ चीजों में खुद ब खुद खैर और बरकत डाली हुई है। सबसे बड़ी बाबरकत चीज दुनिया की क्या है? उससे भी बड़ी है तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। तबारक सूरह फुरकान की भी पहली आयत है और सूरह मुल्क की भी, तबारक वो बाबरकत है ज़ात। सबसे बड़ी बरकत दुनिया में, सबसे बड़ा तबरक अल्लाह की ज़ात, और जब अल्लाह की है ना, तो फिर अल्लाह की बात, अल्लाह का काम, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह अल्लाह, आपकी जिस चीज में लफ्ज अल्लाह आ गया ना, उसमें बरकत हो जाएगी। बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो खाने में बरकत, और इसी तरह से सोहन। किसी दूसरे से बरकत लेना भी ना जायज है जब तक अल्लाह ने उसको बरकत का जरिया ना बनाया हो। कुछ चीजें अल्लाह ने बरकत वाली बनाई, अल्लाह, फिर कुरान, कुरान को कई जगह मुबारकन कहा। किस किस चीज को बरकत के हसूल का आप जरिया समझ सकते हैं? बैतुल्ला के हज को, उमरे को, तवाफ को, सफा मरवा की सही है, रुकने यमानी पर बरकत है, उसका बोसा लीजिए, उसके पास बैठिए, हजर अस्वद से बैतुल्ला के बीच की जगह मुलतजम बबरकत है, चिपके लिपटे दुआएं करें, हतीम के अंदर आपको मौका मिलता है बबरकत है, जमजम बबरकत है, उसको पिए, सर पे डालें, दुआएं मांगे बबरकत है इंशाअल्लाह ताला। फिर तीन मस्जिदें, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और बैतुल मकदस, तीनों बबरकत है। एक नमाज लाख हो गई, 1,000 हो गई, अल्लाह जितना आपको मौका दे वहां इतिकाफ करें, जिक्र करें। फिर अगली चीज बरकत अली कौन सा है? मस्जिद है। फरमाए अल्लाह की नजर में सबसे खूबसूरत मुकामात इस दुनिया के मसाजिद है, और बदतरीन चीजें आप ही बोल दें, मैं नहीं बोलती, बाजार। और रिवायत में आता है, मुझे इस वक्त उसकी सनद नहीं याद, कि आसमान वालों को जमीन पे जो मस्जिदें हैं ना, ऐसे दिखती हैं जैसे चमकते हुए सितारे। और आपको तक एक शख्स जो मुसलमान हुआ था, तो जब हला में गया तो उसने नीचे देखा, जब जमीन, आपको तक कि चांद पे जाए तो जमीन शायद ऊपर दिखती है, तो उसको दो स्पॉट्स बहुत शाइनी दिखे, और जब उसको उन्होंने फोकस किया, जो भी उनके सैटेलाइट्स हैं, तो एक मक्का और एक मस्जिद नबी। तो मुसलमान हो गया था कि मैंने चांद पे जाकर रब को पा लिया, नीचे रह के नहीं पा सका। जिसको अल्लाह ने बाबरकत कह दिया उसको करे, जिसको अल्लाह ने नहीं कहा उसको नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए बरकत की चीज़ जो कुरान और सुन्नत से पता चलती है, तालीम के लिए जिस जगह बैठा जाता है वो जगह बबरकत होती है। लंबी तवील हदीस आप बीसियों बार सुन चुके हैं कि जिस जगह पे अल्लाह के किताब पढ़ी पढ़ाई जाती है, लोग उससे फायदा उठाते हैं, तो वहां फरिश्ते आ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं, उसके ऊपर आसमान तक साया करते हैं। और इसी तरह से मछलियां और समंदरों की जो भी हैं, और जो मरूफ रिवायत आप समझ गए होंगे, यानी जहां इल्म का काम किया जाता है ना, वो बरकत बाबरकत है। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये भी अल्लाह की तरफ से नसीब के फैसले हैं। कई दफा हमने अपनी जिंदगी में ये चीज देख ली है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कैसे किन चीजों को चुनता है अपने काम के लिए, अनबिलीवेबल। और अगर मैं आपसे कहानियां शेयर करने लग जाऊं तो मुझे डर है कि आप मुझे ही ना पकड़ लें। अल्लाह की कसम, जब मैं लोगों के मुंह से सुनती हूँ ये घर ऐसा है, या हम इस चीज पे लगा रहे हैं, हम ये इसके लिए कीजिए, ये भाई क्यों कहते हैं हमारा है ही नहीं। यकीन करें इतनी कहानियां मेरे पास शेयर करने को कि मैं बयान नहीं कर सकती कि कैसे अल्लाह जमीन के टुकड़ों को चुन लेता है। लोग रोते ही रह जाते हैं, पैसे ही मांगते रह जाते हैं, चंदे ही जमा करते हैं। अल्लाह ने जब जिस जगह को चुनना है अल्लाह ने चुन लेना। चर्च को अल्लाह बाज दफा चुन लेता है, कई ऐसी जगह पहले वहां चर्च थे, बाद में वो चर्च गया, वही जगह लोगों ने मस्जिद के लिए खरीद ली, वही जगह लोगों ने कुरान के लिए खरीद ली। ऐसे ही होता है, तो नसीब है ये सब चीजों के। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज जो है जिसको आप बबरकत चीज कह सकते हैं, नसीहत। याद रखिए अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं फज़क्किर इन्नल ज़िक्र तन्फ़उल मोमिनी। नसीहत किसी की अगर आपने सुन के पल्ले से बांध ली, आपकी जिंदगी में बरकत आ जाएगी। फिर इसी तरह माँ बाप की दुआएं बड़ी बाबरकत होती हैं, लेके तो देखें। मजलूमों की दुआएं, इंसानों की खिदमत करना जायज कामों में, उनकी मदद करना, ये बाबरकत है। आप देखें कि शरई पाबंदियों में रहते हुए, ये नहीं कि आप औरत हैं तो मर्दों में घुसती फिर रही हैं, मर्द है तो औरतों में घुस रहे हैं, अपनी चीजों को अलग कर जाते हैं, तो इन चीजों को अगर आप अपनी हद में रखेंगे इंशाल्लाह बरकत होगी। चलिए अब ये बता दीजिए कि इनके अलावा बरकत किस में नहीं होती। ये बड़ा चुभने वाला, इसलिए मैं इसको गो थ्रू कर दूंगी फौरी भाग के, कि किस चीज में बरकत नहीं होती। नंबर एक, हराम में बरकत नहीं होती। कितना ही क्यों ना, और कुरान में आता है कि बलवा जबत का कसरतुल खबीसी, सूरह बकरा में आयत आता है, खूबसूरत औरतें जो कुफार की हैं तुम्हें बड़ी अच्छी भी लगें, जो भी हैं सच्ची मोमिनों के बरक्स, लेकिन उनमें खैर नहीं है। मफहूम है सिर्फ बात का, यानी हराम में कभी बरकत नहीं होती। वो 10,000 पाउंड भी महीने के आपके घर में आएंगे ना, एंड पे कर्जे ही आपके नसीब में, और बाद में बैंकरप्सी है, ये दो ही नसीब है। और आपके मियाँ की सीधी सादी मेहनत की कमाई 1,000-1,500, देखिए बरकत फिर जो देखनी है। मुझे एक सिस्टर की बात नहीं भूलती, कहती नए नए अमेरिका आए थे तो मेरे मियाँ ही कमाते थे और बच्चे सारे छोटे थे, छोटा सा 2 कमरे का अपार्टमेंट था। कहती जो वो बरकत थी मेरे घर में, आज बेटे के 2 कन्वीनियंट स्टोर और मियाँ कहीं जॉब करते हैं, वो बरकत ही कोई नहीं। घर हालांकि उनका मेरा है, हालांकि आप तो यहाँ रह के सोच ही नहीं सकते कितना बड़ा घर हो गया अब उनका। खुद रोती थी सब पता, लेकिन फिर नफ्स लगा होता है इंसान के साथ, अच्छा ये खत्म हो जाएगा तो कर देंगे। अब जिस चीज में हराम का पैसा लग गया उसमें बरकत होगी? घर आपने लिया अल्लाह की नाफरमानी से, क्या उसमें बरकत होगी? या जो दिलों से सुख और चैन उड़ा हुआ है ना, ये घरों की बेबरकती है। जिस घर के लेने देने में नाफरमानी का तरीका इस्तेमाल हो गया, बरकत कोई नहीं रहेगी। आजकल में किसी ने कही कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बहुत लोगों को देखा है जो ही वो अपने किसी बच्चे की शादी करते हैं उसके बाद कोई बीमारी आ जाती है। ये खुद ही कमेंट्स औरतें करती रहती हैं, मैं सुनती रहती हूँ। अच्छा भी खुद कहती हूँ, हाँ सर में लगता है कि नजर लग जाती है, अच्छा लगता है बहुत ही एक्सपोजर होता है, कोई हसद कर देता है, अल्लाह नो सी बेस्ट, हम नहीं जानते। लेकिन याद रखिए बरकत के लिए इंसान को बरकत वाले काम करने चाहिए, इसलिए दूसरी चीजों से नहीं होता। फिर आप देखिए कि नेक मेहमान आपके घर में आए, ये भी बाबरकत है। हदीस में अल्लाह के नबी की दुआ है कि तुम्हारा खाना मुत्तकी खाएं और फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करें। जिस घर में रहमत के फरिश्ते हैं वो बड़ा बाबरकत है, और जिस घर में नाफरमानी की चीजें हैं, कुत्ता है, सास है, आवाज है, जहां से उठते बैठते गाने बजाने की आवाजें आती है, वहां बरकत नहीं होगी। जिस काम को, जिसका हसूल अल्लाह के हुक्म से जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा इंशाल्लाह फायदा होगा। आखिरी बात, फिर आप चंद सवाल करने का हक रखते हैं क्योंकि मौजू बहुत क्रिटिकल था, कि किसी से भी आप अगर तवक्को रखते हैं कि क्या वो आपको बरकत दे सकता है, तो क्या ये मुमकिन है कि नहीं? मिसाल हम बात करें ना, एक शख्स बहुत नेक है, तो क्या वो अपनी विलायत या अपनी नेकी आपको मुझे दे सकता है थोड़ी सी, कि उसकी वजह से उसका भी इख्तियार चल गया? नहीं दे सकता, जब तक अल्लाह ना चाहे। हाँ, बरकत कहाँ होगी? आपके शौहर 5 वक्त के नमाजी हैं, हराम हलाल का फर्क रखते हैं, निगाह नीची रखते हैं। अब आप खाना पकाती हैं ना, किस लिए पकाती हैं? कि अल्लाह ताला ने मुझे शौहर दिया और मैं उनकी खिदमत करूंगी और अल्लाह ने मुझे नेक इंसान दिया है। वो एक एक आपका काम जो करना, और आप उनको खिलाती हैं और आपके खाए हुए खाने से वो नमाज पढ़ते हैं, आप नहीं रोजा रखती वो रखते हैं, ये काम आपके लिए बायस बरकत है। अब दूसरी तरफ ले, एक ऐसी भी बीवी है, अल्लाह सबकी आजमाइशें दूर करे, लेकिन है बीवी, खिलाती भी हैं पिलाती भी हैं, लेकिन ना नमाज है ना रोजा है, बल्कि खा के जो एनर्जी मिली उससे हराम देखा और हराम सुना, तो बरकत कहाँ से आएगी? अगर घरों में बरकत चाहिए ना, तो मुत्तकीन से जोड़ डोल दें। हदीस में आता है कि जब तुम्हारे पास किसी तकवा वाले का, किसी ईमान वाले का रिश्ता है, तो देर ना करो। मैं सोचती हूँ कि असल बरकत फिर वही है कि आप और आपके घर वाले नेक हो जाएं, ना बाबों के पास जाइए ना किसी आस्थाने पे जाइए, आप खुद नेक हो जाइए। अब ये 12 काम जो शुरू में पड़े हैं, बस मैं और आप एक एक करके काम शुरू करते हैं, इंशाल्लाह सब वलीउल्लाह बनेंगे, हर घर में वलीउल्लाह होंगे, और फिर वही सहाबा वाला दौर आएगा इंशाल्लाह ताला। वलीउल्लाह कभी अपने नाम के साथ पीर, शेख और हजरत, यानी बड़े बड़े साहब के लाके नहीं लगवाएगा, वो तो मस्कीन बंदा होगा कोई अल्लाह का। वो कहता मेरी तो बात ही ना करो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जो बंदा आली हजरत आ फुलां और मरकदहू और नूर और नूर और फुलां, लंबी चौड़ी कहानी है, वो कभी नहीं लेगा। और एक और बात याद रखिए कि क्योंकि मैंने एक में समेट दिया था कि खिलाफ शरा वो कोई काम नहीं करेगा, वो कभी लोगों का अपना नहीं बनाएगा। यानी कोई कह के आए मेरे हाथ पे बैत कर लें, और वो कोई कहे कि आप पहले मेरे साथ अपने ताल्लुक को जोड़ें, इस सिलसिले का हिस्सा बने, वो वली नहीं होगा। वो समझे कि वो खुद से बने। वलीउल्लाह कभी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं सैयदों की नस्ल से हूं, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि हम तो जद्दी पुश्ती गद्दी नशीन है। वलीउल्लाह हैं, लेकिन वो इन सारी बातों से खुद को आजाद करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ करे, कहने में सुनने में जो गलत बात हुई वो मेरी तरफ से थी और शैतान की तरफ से थी, और अगर कोई अच्छी बात थी तो अल्लाह की तरफ से थी, और अल्लाह ताला उसको कबूल करके इस्लाह फरमाए। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين